व्हेनेवर वी टॉक अबाउट लर्निंग, लर्निंग इज दैट व्हाट वी डू एंड हाउ वी डू इट. अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ तो हमने देखा है कि एक जो छोटा बच्चा होता है कि जैसे ही वो पैदा होता है तो जो न्यूली बॉर्न चाइल्ड होता है वो अपने आप ना चल सकता है, ना फीड कर सकता है और ना कोई और काम कर सकता है. तो द मदर हेल्प्स द चाइल्ड. लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ने ये वाली स्किल्स जो हैं एक्वायर कर ली हैं. दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, दैट लर्निंग प्रोसेसेस, हमने कैसे लर्न किया एंड हाउ वी हैव एक्वायर्ड ऑल दोज स्किल्स. अभी डे टू डे लाइफ में भी देर इज़ लॉट ऑफ लर्निंग दैट गोज़ ऑन, वेदर इट इज़ लर्निंग योर सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल अभी हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो लर्निंग दी कॉन्सेप्ट्स इन साइकोलॉजी और लर्निंग फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस हाउ टू डील विद द सोशल वर्ल्ड अराउंड यू और लर्निंग हाउ टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, एनीथिंग, एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू लर्निंग. अनलेस यू लर्न इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सर्वाइव इन दी एनवायरमेंट. तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस दैट हाउ, वॉट इज़ लर्निंग एंड हाउ इट टेक्स प्लेस. तो इसमें हम लोग ये भी बात करेंगे कि जो लर्निंग है, सिंस आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड दैट वॉट एवर वी डू दैट ऑल कम्स थ्रू लर्निंग. तो वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट लर्निंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर एन इंडिविजुअल टू हैव. इट इज़ थ्रू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग दैट वी बिकम कॉम्पिटेंट स्किल्ड किसी भी चीज़ में, वेदर इट इज़ रीडिंग, राइटिंग, डिलीवरिंग लेक्चर्स और पेंटिंग और ड्राइविंग, एनीथिंग, एनी एरिया. अनलेस वी डू प्रैक्टिस, अनलेस वी लर्न इट, वी प्रैक्टिस इट एंड देन वी डू इट एवरी डे, देन ओनली वी बिकम स्किल्ड. अदरवाइज हम लोग नहीं होते हैं. वाई डू वी आस्क आवर किड्स टू यू नो, अगर वो कोई मिस्टेक करते हैं कि बार बार लिखो, बार बार लिखो, बार बार लिखो, सो दैट वो प्रैक्टिस करके वो लोग दे लर्न दैट वॉट वी हैव वेयर दे आर लैकिंग. तो थ्रू दिस लेसन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट वॉट आर दी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग. वील ऑल्सो बी टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, दैट वॉट इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग. वील ऑल्सो डिस्क्राइब द डिफरेंट वेज ऑफ लर्निंग एंड वील टॉक अबाउट different phenomena such as what is preparedness for learning. Unless you are prepared for learning, you will not learn. मतलब एक प्रिपेयरनेस तो चाहिए, एक मेंटल सेट चाहिए दैट आई हैव टू लर्न, देन ओनली यू विल लर्न, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल. एंड वील ऑल्सो टॉक अबाउट लर्निंग डिसेबिलिटी. इसमें हम लोग जो हैं कुछ लर्निंग के एक्सपेरिमेंट्स की भी बात करेंगे जो पावलोव ने और स्किनर ने किए हैं, उनकी बात भी हम लोग आज के लेसन के थ्रू करेंगे. हाँ देखिए, जब हम बात करते हैं किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम उसका बेसिस समझ लें, बेसिक समझ लें. क्योंकि जब हमें बेसिक्स नहीं पता होता तो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड. तो इफ़ वी टॉक अबाउट द नेचर ऑफ लर्निंग, तो उसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल जैसे है कि अगर आप देखते हो कि कभी भी कोई बच्चा जो है वो किसी गर्म चीज़ को, तवे को या किसी भी चीज़ को, हॉट प्लेट को अगर वो टच करता है तो एकदम से अपना हैंड्स जो हैं वो पीछे कर लेते हैं. कई बार मैंने नोटिस किया कि बच्चों को कुछ चीज़ें जो ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती हैं उनके लिए, वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी करा देना चाहिए, क्योंकि बच्चों की क्यूरियोसिटी रहती है और अगर वो एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तो वो आपके एब्सेंस में भी करते हैं. तो जैसे अगर बच्चे एक बार अपने आप एक्सपीरियंस कर लें ऐसी चीज़ें जो कि बहुत हार्मफुल नहीं हैं फॉर द टाइम बिंग, तो उससे वो दे लर्न दैट दिस कैन बी हार्मफुल इफ़ आई टच दिस, इफ़ आई टच अ हॉट प्लेट, इफ आई पुट माई हैंड अंडर वाटर विच इज़ हॉट वाटर, और इफ़ आई टच समथिंग, कुछ भी कांटे वाला चीज़ अगर मैं टच करूँ तो दैट विल बी हार्मफुल. तो बच्चे सीख जाते हैं, दैट इज़ दे लर्न एंड थ्रू देयर एक्सपीरियंस. तो यही हम लोग आज बात करेंगे कि लर्निंग इज़ अ प्रोसेस बाय विच अ चेंज और मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर टेक्स प्लेस. जैसे कि मैंने कहा कि बच्चा अगर एक बार हॉट प्लेट को टच कर देगा तो उसे समझ आ जाएगा कि नेक्स्ट टाइम से मुझे नहीं टच करना है. दैट मीन्स देयर विल बी अ मॉडिफिकेशन इन द बिहेवियर. दी किड विल अंडरस्टैंड दैट आई डोंट हैव टू टच दिस, अदरवाइज आई विल हर्ट माई सेल्फ. तो लर्निंग इज बेसिफिकली अ मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर एंड इट इज़ अ वी कॉल इट दैट इट इज़ अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर. कि आपका एक परमानेंट चेंज हो जाता है बिहेवियर में वेन यू एक्सपीरियंस समथिंग. लर्निंग कैन ऑल्सो भी डिफाइंड as I said as a permanent change in behavior as a result of practice and experience. For example, we were talking about that how do we learn the or acquire the skill of riding a bicycle or riding a motorcycle. So first we learn it and then we practice it and through our experience we become skilled in it. So this is what is learning, that it is a change in behavior. It ultimately will lead to a change in behavior. Jaise ki हम लोग बहुत सारी चीज़ों में एक्सपीरियंसेस रहते हैं, जैसे कि हमें किसी चीज़ के लिए बता दिया जाए कि दिस इज़ बैड एंड दिस इज़ गुड, तो गुड बैड में हमें पता चलता है व्हाट आर द सोशल नॉर्म्स एंड हाउ वी हैव टू फॉलो दो सोशल नॉर्म्स. तो उसके अकॉर्डिंगली जब हमने एक बार लर्न कर लिया तो दैट विल मॉडिफाई दी वे वी थिंक एंड आर बिहेवियर. तो लर्निंग इज़ अ चेंज इन बिहेवियर, इट कैन बी फॉर बेटर और इट कैन बी फॉर वर्स. वर्स के लिए भी होता है बिकॉज समटाइम्स जब बच्चे जो होते हैं वो गलत कंपनी में पढ़ के कुछ गलत चीज़ें लर्न कर लेते हैं तो दैट ऑल्सो बिकम्स अ चेंज इन देयर बिहेवियर, दैट ऑल्सो मॉडिफाइज देयर बिहेवियर विच कैन बी डेंजरस फॉर देम. लर्निंग जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू नो दैट लर्निंग टेक्स प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस. जैसे कि अगर आप कार ड्राइव करना सीखते हो तो अनलेस यू प्रैक्टिस इट यू वॉन्ट बी एबल टू ड्राइव इट प्रॉपरली. अगर आप लिखना सीखते हो तो अनलेस यू प्रैक्टिस इट डेली यू वॉन्ट बी एबल टू राइट इट प्रॉपरली. तो लर्निंग टेक्स प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस. और कभी भी किसी को हम अगर परमानेंट चेंज कहते हैं तो वी मस्ट से दैट दिस इट इज़ अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, मतलब इट मस्ट लास्ट फॉर अ रिलेटिवली परमानेंट टाइम, काफ़ी टाइम के लिए रहता है लर्निंग. कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग चीज़ें भूल जाते हैं लेकिन फिर से थोड़ी प्रैक्टिस के बाद हमें वो याद आ जाती हैं. मान लीजिए कि अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ कि अगर आप हमेशा से खाना बनाते हैं, देर इज़ अ स्किल ऑफ यू हैव एक्वायर्ड द स्किल काफ़ी पहले अपने टाइम में, लेकिन अगर आप हॉस्टल चले जाते हो या कहीं बाहर चले जाते हो जहाँ पे यू डोंट हैव टू मेक फूड बट यू जस्ट ऑर्डर फूड, बट व्हेन इट कम्स अगेन टू मेकिंग फूड तो ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल खाना बनाना भूल चुका होगा. विद सर्टेन प्रैक्टिस देन अगेन आप उस चीज़ को जो है वो एक्वायर कर सकते हो दोबारा से. तो इट इज़ अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, मतलब ये आपके बिहेवियर में परमानेंट चेंज जो है वो कहीं ना कहीं लेकर आता है. उसके बाद हम लोग ये भी आता है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट लर्निंग इज़ थॉटफुल रिएक्शन टू अ गिवन स्टिमुलस. किसी भी स्टिमुलस के लिए आपका एक थॉटफुल रिएक्शन है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ कि ड्रग्स लेना है या नहीं लेना है, ठीक है, बहुत सारे अवेयरनेस कैंपेन्स चलते हैं इसके लिए. तो वो अवेयरनेस कैंपेन्स में स्पेशली ये बताया जाता है कि उसके क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं आप पे. तो यू लर्न फ्रॉम इट, यू लुक एट इट, यू लर्न फ्रॉम इट एंड देन यू गिव योर रिएक्शन टू इट. रिएक्शन इज़ कि नहीं दिस इज़ बैड, आई मस्ट नॉट गेट माई सेल्फ इंडल्ज्ड इन ऑल दीज एक्टिविटीज़. दिस इज़ वन एग्जाम्पल, देर आर सो मैनी अदर एग्जाम्पल्स. कुछ भी चीज़ आप पहले उसको देखते हो उसकी, जैसे कि आपका रिएक्शन है कि आपको हॉट प्लेट को छूना है या नहीं छूना है, यू विल हर्ट योर सेल्फ तो आप नहीं छूओगे. तो दैट इज़ योर रिएक्शन टू अ गिवन स्टिमुलस. एंड लर्निंग it is very important that you differentiate learning from the concepts like maturation or reflexes. अब maturation reflexes क्या होता है कि जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि बच्चा जो है वो उसने चलना सीखा तो वो लर्निंग है, नहीं वो लर्निंग नहीं कहते हैं हम उसे. द चाइल्ड इज़ वॉकिंग बिकॉज द एज इज़ यू नो अलाउइंग द चाइल्ड टू वॉक, कि जब उसमें मसल स्ट्रेंथ इतना हो गया तो बच्चा जो है वो वॉक करने शुरू कर देता है. तो दैट इज़ नॉट लर्निंग एज सच, दैट इज़ अ चेंज इन योर सेल्फ एज अ रिजल्ट ऑफ मेच्योरेशन. उसके बाद जो है कभी कभी ये जैसे इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेच्योरेशन एंड लर्निंग. मेच्योरेशन को जो है वो हम डेवलपमेंटल चेंजेस कह सकते हैं कि इट हैज़ कम बिकॉज ऑफ़ द डिवेलपमेंटल चेंजेस दैट वर हैपनिंग इन द पर्सन. कि बच्चा जो है वो 6 महीने का हुआ, 7-8 महीने का हुआ तो उसकी मसल स्ट्रेंथ इतनी हुई कि डिवेलपमेंट की वजह से ही और शी लर्नड टू वॉक. तो जो भी चेंजेस हम, जैसे हमने पहले भी कहा कि लर्निंग इज़ अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस. बट इफ़ लर्निंग इज़ हैपनिंग एज अ रिजल्ट ऑफ योर मेच्योरेशन और योर डेवलपमेंटल चेंजेस तो हम उसे लर्निंग नहीं कहते, दैट इज़ अ डिफरेंट एस्पेक्ट. फिर हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस की. रिफ्लेक्स एक्शंस भी एज सच जो होते हैं वो हमारा लर्निंग नहीं होता. जैसे कि यू जस्ट ब्लिंक्ड योर आई, तो आपने आई ब्लिंकिंग जो है वो किसी से सीखा नहीं है, दैट इज़ अ रिफ्लेक्स एक्शन. या फिर कुछ इंस्टिंक्टिव पैटर्न्स होते हैं, जैसे कि बर्ड्स जो होते हैं ना वो अपना नेस्ट बनाते ही बनाते हैं, तो दैट इज़ एन इंस्टिंक्ट इन देम. वो किसी, कोई उनको बताता नहीं कि ऐसे आना और ऐसे घास फूस लेके आना और ऐसे अपना नेस्ट बनाना, दैट इज़ एन इंस्टिंक्ट. दैट इज़ एन इंस्टिंक्टिव लर्निंग. हाँ, बट वी कैन से दैट इंस्टिंक्टिव लर्निंग कैन बी मॉडिफाइड थ्रू यू नो मोर लर्निंग एंड मोर प्रैक्टिस, कि ज़्यादा ज़्यादा आप कोई चीज़ जो करोगे और अच्छे से करोगे तो आप कर सकते हो. तो द पॉइंट विच आई वॉन्ट टू मेक हियर इज़ दैट लर्निंग इज़ अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस, एंड लर्निंग शुड बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम दी मेच्योरेशन एंड डेवलपमेंटल चेंजेस. और इंस्टिंक्टिव लर्निंग को आप लर्निंग नहीं कह सकते, बट हम ये ज़रूर कहेंगे कि इंस्टिंक्टिव लर्निंग जो है वो हमारे किसी ना किसी तरह से उसको हम प्रैक्टिस कर करके उसको हम मॉडिफाई ज़रूर कर सकते हैं.
Since we have learned the nature of learning and the experiment, the topic we have discussed about the learning, and we are quite aware of now what is actually the learning. If we come on to the basic experiments, what are the basic experiments in learning?
There were basic experiments that were going on to understand that what is learning and how does it take place, in which we talk about, majorly talk about two learning experiments. One is by Ivan Pavlov, that is classical conditioning experiment, and another is the instrumental or operant conditioning. So first of all, we'll talk about the classical conditioning experiment. Ab is experiment mein kya hua tha? This experiment is also known as the associative learning. Associative learning, kaise aap kisi ek cheez ke sath associate karke kisi dusri cheez ko learn karne ki कोशिश करते हैं. जैसे कि अब मैं आपको बताती हूँ कि क्लासिकल कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट्स में क्या हो रहा था. कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट हाउ इट वाज हैपनिंग. क्लासिकल कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट पावलोव ने कैसे किया था, उसने क्लासिकल कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट करने के लिए, इसको रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग या पावलोवियन कंडीशनिंग भी कहते हैं, उसने अपने डॉग को फूड देने से पहले, ही जस्ट वॉन्टेड टू मेक द डॉग लर्न दैट हाउ ही कैन सैलिवेट टू दी बेल. मतलब हमेशा क्लासिकल कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट, एज आई टोल्ड यू, इज़ ऑल्सो कॉल्ड एन एसोशिएटिव लर्निंग. तो जब भी जो पावलोव था, उन्होंने अपने डॉग को फूड देना था, तो फूड देने से पहले वो हमेशा बेल बजाते थे. तो इनिशियली ट्रायल्स में क्या हो रहा था कि वो फूड दे रहे थे तो डॉग फूड को देख के सैलिवेट कर रहा था. वो बेल बजा रहे थे, फूड दे रहे थे, पहले बेल बजाई फिर फूड दिया, तो उसकी वजह से रिस्पॉन्स क्या आ रहा था कि डॉग स्टार्टेड सैलिवेटिंग. लेकिन जब उन्होंने इन ट्रायल्स को बार बार रिपीट किया कि बेल बजाया, फूड दिया और फिर रिस्पॉन्स आया, सैलिवेशन रिस्पॉन्स, तो उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि आफ्टर सम टाइम द डॉग स्टार्टेड सैलिवेटिंग टू द बेल ओनली. मतलब हमने ये सीक्वेंस रखा था कि बेल आएगी, बेल के बाद फूड आएगा और उसके बाद डॉग जो था वो सैलिवेट कर रहा था. लेकिन अब डॉग ने एक्सपेक्ट करना शुरू कर दिया कि जैसे ही बेल आएगी मतलब मेरा खाना भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा. तो वो एक सैलिवेटरी रिस्पांस जो था विदाउट वेटिंग फॉर द फूड, वो बेल बजते ही वो जो था वो रिस्पॉन्स जो था उसमें आने शुरू कर, डॉग ने, ही लर्न टू सैलिवेट इन रिस्पॉन्स टू द रिंगिंग ऑफ बेल. तो इसे कहते हैं एसोशिएटिव लर्निंग. हम कैसे एसोशिएट करते हैं चीज़ों के साथ और उसके बाद हम लर्न करते हैं. अब जैसे इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि द बिहेवियर ऑफ अ चाइल्ड हु अवॉइड्स बर्निंग मैच स्टिक्स आफ्टर हर्ट बाई इट. अब एसोसिएशन, अब जैसे कोई बच्चा है वो कैसे लर्न करेगा, हाउ द चाइल्ड विल लर्न टू अवॉइड द मैच स्टिक्स. जब भी उसने मैच स्टिक्स के साथ खेला तो द चाइल्ड हर्ट हिमसेल्फ, उससे उसको जल गया, कुछ हो गया. तो दैट इज़ एन एसोशिएटिव लर्निंग, दैट इफ़ आई प्ले विद द मैच स्टिक्स देन द रिजल्ट इज़ गोइंग टू बी बर्निंग ऑफ माई हैंड. तो बच्चे ने ये सीख लिया, तो दैट मीन्स एन एसोशिएटिव लर्निंग, द चाइल्ड विल नेवर प्ले विद द मैथ स्टिक्स. और इसको आप किसी पॉजिटिव सेंस में भी ले सकते हो, वो कुछ भी हो सकता है कि एनीथिंग दैट यू लर्न. एसोशिएटिव लर्निंग हम कहते हैं कि आप बच्चों को एसोशिएटिव लर्निंग के थ्रू कैसे सिखा सकते हो, कि अगर अगर आपको हमने बेल, जैसे ऑटोमेटिकली जब स्कूल में बेल बजती है तो बच्चों को पता होता है ऑटोमेटिकली दे रन टू दी क्लास आफ्टर रिसेस, क्योंकि उन्हें पता है कि बेल बज गई, इट इज़ एन इंडिकेशन दैट वी हैव टू मूव टू द क्लास. दैट इज़ अ लर्निंग अगेन, दैट यू आर रिस्पॉन्डिंग टू अ स्टिमुलस, यू हैव एसोशिएटेड दैट दिस इज द टाइम दैट आई शुड मूव टू माई क्लास. तो दैट वॉज वॉट वॉज क्लासिकल कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट. अब वेन एवर वी टॉक अबाउट क्लासिकल कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट्स, इसमें हम काफ़ी कॉन्सेप्ट की बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरलाइजेशन एंड डिफ्रेंसिएशन. जनरलाइजेशन और डिफ्रेंसीशन के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करेंगे तो अगर हम क्लासिकल कंडीशनिंग के एक्सपेरिमेंट पे जाएं तो हम लोग क्या कर रहे थे कि बेल बजा रहे थे फिर फूड दे रहे थे एंड देन दी डॉग वॉज सेलिब्रेटिंग बट आफ्टर सम टाइम वॉट पावलोव डिड दैट ही स्टार्टेड रिंगिंग द बजर इंस्टेड ऑफ द बेल तो डॉग को लगा कि बेल और बजर इज द सेम थिंग एक जो जो सिमिलर साउंडिंग या लुकिंग स्टिमुलस होते हैं जब उन पे हम सेम रिस्पांस देते हैं तो उसे कहते हैं जनरलाइजेशन तो बेल एंड बजर वर दी सिमिलर साउंडिंग स्टिमुलस तो द रिस्पांस ऑफ सैलिवेशन वाज फॉर द बेल एंड इट स्टार्टेड कमिंग फॉर द बजर आल्सो तो वो उसने जनरलाइज कर दिया इसे कहते हैं जनरलाइजेशन जब आप सिमिलर साउंडिंग या सिमिलर लुकिंग स्टिमुलस के लिए जो है वो एक जैसा रिस्पॉन्स देते हो जो आपने लर्न किया है ये होता है जनरलाइजेशन बट वॉट इज डिफ्रेंसीशन डिफ्रेंसीशन होता है कि वेन यू लर्न दैट बजर इज डिफरेंस बेल इज डिफरेंट आई विल गेट फूड ओनली इफ द बेल इज रंग आई विल नॉट गेट फूड इफ द सिमिलर साउंडिंग थिंग इज स्टिमुलस इज रिंगिंग तो डॉग विल लर्न टू रिस्पॉन्ड टू द बेल एंड नॉट टू द बजर दिस इज नोन एज डिफ्रेंसीशन कि पहले तो उसने जनरलाइज कर लिया कि एक ही जैसी आवाज़ आ रही है ना तो आवाज़ आने पर सैलिवेट करना शुरू कर दिया बट ग्रेजुअली द डॉग लर्न्ड कि बजर बजने पर मुझे खाना नहीं मिलेगा लेकिन बेल बजने पर खाना मिलेगा तो दैट मीन्स ही स्टार्टेड डिफ्रेंशिएटिंग तो ये दो चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कहते हैं जनरलाइजेशन और डिफ्रेंसीशन का कॉन्सेप्ट Then comes the concept of extension and spontaneous recovery. Extension and spontaneous recovery का मतलब होता है कि जब when Pavlov was doing his experiments, तो initially तो bell was ringing, food was presented and the dog was salivating. फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि जो dog था Pavlov in order to understand to how much extent the dog has learned to respond to the bell only तो उसने क्या किया सिर्फ जो experimenter था वो bell बजाता रहा लेकिन उसने food नहीं दिया तो initially तो जो dog था क्योंकि उसकी expectation थी कि bell बजेगी तो खाना आएगा तो initially dog जो था bell के response पे हमेशा salivate करता था लेकिन जब बहुत सारे repeated trials हो गया when the bell was ringing but the dog was not getting food है ना तो The dog stopped salivating to the bell क्योंकि अब बहुत टाइम हो गया उसने तो यही लर्न किया था डॉग ने कि बेल बजेगी फूड आएगा और मैं खाना खाऊंगा लेकिन बेल ही बजी जा रही थी और खाना नहीं आ रहा था तो उसका वो जो रिस्पॉन्स था ऑफ सेलिब्रेटिंग टू द बेल वो एक्सटिंक्ट हो गया क्योंकि उसको लगा कि नहीं आ रहा है ये तो मतलब मुझे बेवकूफ़ बना रहा है तो द डॉग स्टॉप्ड सेलिब्रेटिंग टू द रिंगिंग ऑफ बेल इसे कहते हैं response that the dog has acquired of responding to the bell got extinct because the response was not being associated with the expected stimulus khane ke sath bell ko jab association karna aapne band kar diya to dog ne bhi learn kar liya ki ab koi association nahi ho rahi hai sirf bell baj rahi hai mujhe khana nahi mil raha hai to dog ne bhi bell bajne pe thodi der baad jo hai wo salivate karna band kar diya ise kehte hain extinction response ki extinct ho gaya wo learning of responding to the bell लेकिन स्पॉन्टेनियस रिकवरी क्या होता है कि अगले दिन पावलोव ने नोटिस किया कि थोड़े डिले के बाद जो था वो जो एक्सटिंक्ट रिस्पांस था वो फिर से वापस आ गया मतलब स्पॉन्टेनियस रिकवरी होगी दोबारा से डॉग ने जब हमने ट्रायल्स रिपीट की तो दोबारा से डॉग ने जो था प्रैक्टिस के बाद फिर से वो रिस्पॉन्स जो था ऑफ सेलिवेटिंग टू द बेल वो एक्वायर करना शुरू कर दिया अब इसको मैं थोड़ा सा अगर उसमें हमारे जनरल टर्म्स में समझाऊँ फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमन बींग्स वी सी दैट द रिस्पॉन्स टू लर्न और राइड अ बाइसाइकिल आप कैसे करते हो जैसे बैलेंसिंग करना है या आपको ब्रेक्स लगाना है या कुछ करना है तो आप कैसे लर्न करते हो However, while riding a normal bicycle, one does not use the gears. आप लोग normal उसमें तो gears use नहीं करते हो लेकिन जब आप scooter में gears use करते हो तो you are able to differentiate. क्योंकि scooter में और bike में mainly तो आप लोगों को the person who is driving or who is riding the scooter knows that the basic is to balance. द टू व्हीलर, तो वो तो आपको आता है. लेकिन अगर ह्यूमन बींग्स जो हैं, इफ़ दे स्टॉप यू नो राइडिंग द बाइसाइकिल और स्कूटर, तो उसका ये मतलब नहीं होता कि दे फॉरगेट द रिस्पॉन्स कम्प्लीटली. कुछ प्रैक्टिस के बाद वो फिर से वो रिस्पॉन्स जो है वो एक्वायर कर देते हैं. उसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी. जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आप खाना बनाना आपने एक बार एक्वायर कर लिया, दैट स्किल यू हैव एक्वायर्ड, तो इसका ये मतलब नहीं है कि बीच में अगर आपने एक दो साल तक नहीं बनाया तो यू विल नेवर बी एबल टू मेक इट इन योर होल लाइफ. कुछ प्रैक्टिस के बाद अगर वो एक्सटिंक्ट हो गया रिस्पॉन्स ऑफ मेकिंग फूड, ठीक है, तो अगर एक्सटिंक्ट हो गया लेकिन कुछ प्रैक्टिस के बाद अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो फिर अगेन यू विल एक्वायर दैट रिस्पॉन्स एंड दैट इज नोन एज स्पॉन्टेनियस रिकवरी. दिस वॉज वन एक्सपेरिमेंट. Another experiment was learning by consequences. Learning by consequences को अगर मैं छोटा सा example समझाऊँ तो उसमें Skinner box की हम लोग बात करते हैं. Different experiments हुए हैं जिसमें mouse के साथ भी, rats के साथ भी experiment हुआ है, pigeon के साथ भी experiment हुआ है. जैसे कि एक pigeon को एक box में डाल दिया और उसको एक उसको food palette चाहिए था, तो pigeon randomly box में जो था वो wander कर रहा था कि food palette कहाँ से मिलेगा. उधर एक button था, तो एक लाइट बटन था, उसने जो था एक्सीडेंटली उसको जो था वो पैक कर दिया अपने उससे. तो उससे क्या हुआ कि जैसे इसको पैक किया तो फूड पैलेट आ गया, तो पिजन को जो है वो समझ आ गया कि अगर मैं इसको पैक करूँगा तो मुझे खाना मिलेगा, मतलब आई हैव टू डू समथिंग एंड देन आई विल गेट अ रिवॉर्ड, आई हैव टू परफॉर्म समथिंग एंड देन आई विल गेट अ रिवॉर्ड. इसे कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, कि जो भी आपने लर्न दैट इट इज़ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट. जैसे हम बच्चों को कई बार समझाते हैं, बच्चों को कैसे समझाते हैं कि अगर आपको, हम कई बार बोलते हैं कि आपको खेलने जाना है ना, फर्स्ट यू हैव टू फिनिश योर होमवर्क, यू फिनिश योर होमवर्क देन आई विल टेक यू फॉर प्ले आउटसाइड. तो दैट इज़ पॉजिटिव नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट एंड दैट इज़ इन ऑपरेंट कंडीशनिंग. दी चाइल्ड नोज दैट आई हैव टू परफॉर्म दिस, व्हेन आई डू दिस देन आई विल गेट द रिवॉर्ड. सो इन दिस केस द रिवॉर्ड थिंग दैट द स्टिमुलस इज द चाइल्ड हैज़ टू डू द होमवर्क, फिनिश हिज होमवर्क एंड व्हेन ही फिनिशेज देन द रिवॉर्ड कम्स एज कम्स दैट ही गोज फॉर प्ले. तो इसे कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग, कि आपको पता है कि कोई चीज़ आपको करनी पड़ेगी उसके बाद आपको रिवॉर्ड मिलेगा. देखिए जब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लर्निंग की बात करते हैं तो देर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लर्निंग लाइक स्किल लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग, वर्बल लर्निंग, सोशल लर्निंग. वी मस्ट नो दैट व्हाट आर, आई जस्ट ब्रीफली डिस्कस व्हाट आर दीज फॉर्म्स ऑफ लर्निंग. सो इफ यू टॉक अबाउट स्किल लर्निंग, स्किल लर्निंग टेक्स प्लेस इन 3 स्टेजेस. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो दैट व्हाट इज रिक्वायर्ड for performing a particular task. वो हम कहते हैं कि this is the cognitive stage of learning. Second, in the second stage is called the association stage, in which you actually do that task and you do it and you acquire accuracy and precision. And finally, you do not even have to think about it and you just do it. For example, if it is making food, how will you make food? How would you knead the dough? Or how would you drive a bicycle? Or how would you drive your car? The first stage is that you need to know that what is required. कार चलाने के लिए क्या मुझे ज़रूरत है, कार चाहिए होगी, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, गियर्स होते हैं, स्टेयरिंग होता है, हॉर्न होता है, ब्रेक्स होती है, एक्सीलेटर होता है. सो दैट इज़ द कॉग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग. द सेकेंड स्टेज इज़ दैट व्हेन यू प्रैक्टिस इट एंड यू डू इट विद, यू एक्वायर इट एंड यू डू इट एक्यूरेटली एंड विद प्रिसीजन. और लास्ट स्टेज में हम कहते हैं कि ऑटोमेटिक हो जाता है चीज़. जैसे फिर आपको कार चलाने के लिए यू डू, जब आपने दोज हु ड्राइव दे नो दैट व्हेन इनिशियली दे वर ड्राइविंग और इनिशियली दे स्टार्टेड ड्राइविंग, तो उनको देखना पड़ता था कि अच्छा अभी मैं कार में बैठा हूँ, एक्सीलेटर इतना छोड़ना है, ब्रेक इतना छोड़ना है तो स्टार्ट होगा, उसके बाद फर्स्ट गियर में चलाना है, न्यूट्रल में चलाना है. तो दैट वॉज द इनिशियल स्टेजेस व्हेन यू वर लर्निंग दैट स्किल, यू वर एक्वायरिंग दैट स्किल्स. बट After a lot of practice, when you were driving it every day, तो आप you just get into your car और आप सोचते नहीं हो कि gear ऐसे करना है, accelerator ऐसे दबाना है, it becomes automatic. So that is known as the automatic skill. Maybe it is brushing your teeth. That is again a skill. कैसे आप एक्वायर करते हो, शुरू में छोटे बच्चों को ऐसा सिखाते हो पेस्ट लो, ब्रश लो, ऐसे टीथ ब्रश करो, ये करो वो करो, लेकिन जब आप बड़े हो जाते हो तो यू हैव डन इट सो मेनी टाइम्स कि आप बस आप सुबह उठते हो और ऑटोमेटिकली आपका हाथ जो है वो ब्रश की तरफ चला जाता है एंड यू स्टार्ट डूइंग इट. तो this is how we acquire a skill. Skill of riding a cycle, a bicycle, you know, your car, anything. जो भी आप skill acquire करते हो किसी भी चीज़ में, तो वो शुरू में initially जो होता है आपको cognitive stages पे आप सोचते हो कि क्या क्या चीज़ें करनी है, फिर आप उसकी practice करते हो और end में वो skill आप में इतना ingrain हो जाता है कि that becomes absolutely, you know, that is so smooth and that becomes so automatic that you do not have to think about it and you just do it. That is skill learning. Second आता है हमारा verbal learning. Verbal learning is जैसे हमारे छोटे बच्चे सीखते हैं that how to learn the letters, how to speak, how to write. That is everything is verbal. So this is known as verbal learning. Third हमारा आता है concept learning. What is concept learning? For example, a 2 year old child or a 3 year old child is learning the concepts of of animals. So first of all, the child will know that there is the species is called animals. Animals hain. फिर वो ये कॉन्सेप्ट लर्न करेगा कि वी आर ह्यूमन बींग्स एंड अदर आर एनिमल्स एंड दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस. फिर धीरे धीरे द चाइल्ड विल लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ एनिमल्स इज लर्न फर्स्ट, देन द चाइल्ड विल स्टार्ट डिफरेंशिएटिंग बिटवीन एनिमल्स. हु इज़ डॉग, हु इज़ कैट, डॉग, कैट, रैबिट, एलिफेंट, वट एवर. तो इसे कहते हैं दिस इज नोन एज कॉन्सेप्ट लर्निंग. यू आर लर्निंग द डिफरेंट कॉन्सेप्ट. धीरे धीरे आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट को लर्न करते हो. यू लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट्स. For example, light in this room or light on the traffic road. So you learn the concept that when these three lights are on green, yellow and red, that is a signal. These are traffic lights. That is again a concept. So you differentiate those lights with the lights in the in the room or your bedroom or your drawing room or somewhere else. So that is known as concept learning. You are learning the different concepts in the environment. And then comes the social learning. Social learning, as we all know, that how do we respect elders. Sometimes the little kids learn it through imitation. आपने कई बार देखा होगा कि अगर हम लोग अपने बड़ों के elders के पाँव छूते हैं तो जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो भी उनके जाके पाँव छूते हैं, बिकॉज दे लर्न दैट दिस इज अ सोशल नॉर्म एंड आई ऑल्सो हैव टू डू इट. तो दिस इज हाउ दे आर लर्निंग. दैट इज नोन एज सोशल लर्निंग. जो सोशल नॉर्म्स हैं उनको हम किस तरह से सीखते हैं. तो दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लर्निंग, विच इज स्किल लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग, वर्बल लर्निंग एंड योर सोशल लर्निंग.
वॉट इज अ लर्निंग कर्व?
Whenever we talk about a learning curve, अगर आप इधर देखोगे तो यहाँ पे that is drawn, एक x axis है और एक y axis है. हमने x axis पे practice जो अपना x axis पे जो होता है, हाँ, हमने अपनी practice trials रखी होती है और y axis पे हमने रखा होता है कि हमारे कितने improvement हुआ. इसको मैं simple terms में अगर समझाऊँ, graph में अगर आप समझेंगे तो जैसे x axis पे practice है, आपने कितना practice किया, तो वो practice से आपका improve मूवमेंट कितना हुआ लर्निंग पे, वो ऊपर आपको दिखेगा. तो आप इनिशियली देखोगे, अगर आप इस लर्निंग कर्व को देखोगे अपने बुक में, तो आप देखोगे कि शुरू में वो लर्निंग कर्व जो है दैट इज़ गोइंग अप, नीचे से वो ऊपर जा रही है, क्योंकि आप लर्निंग स्टेज में हो. आज आपने 1 से 10 तक सीखा, कल आपने 10 से 20 तक सीखा और आगे आप बढ़ते गए और आप सीखते गए. या फिर आज आपने ये सीखा कि अगर मुझे राइड करना है कार, अगर मुझे ड्राइव करना है कार, तो आज आपने कार का बेसिक सीखा, एक्सीलेटर क्या है, ब्रेक क्या है, क्लच क्या है. तो आपने ज़ीरो से शुरू किया, पहले आपको कुछ नहीं पता था, फिर आपने धीरे धीरे उसका गियर्स चेंज करना शुरू किया. तो द लर्निंग कर्व इज़ इम्प्रूविंग एंड इट इज़ यू नो मूविंग अपसाइड, ऊपर जा रहा है. तो एक्स एक्सिस पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो और वाई एक्सिस पे वो शो कर रहे हैं कि आप कितना इम्प्रूवमेंट आप में हो रहा है. लेकिन आप एक टाइम पे देखोगे जब वो प्लैट्यू स्टेज पे आ जाता है, प्लैट्यू स्टेज पे होता है कि नाउ यू नो हाउ टू ड्राइव. अब उसमें और क्या सीखना है आपको, ड्राइविंग इज ऐसे ड्राइव करना है, ऐसे ड्राइव करना है, ट्रैफिक में ऐसे जाना है, वैसे जाना है. तो वो स्टेज होता है जब वो प्लैट्यू स्टेज आता है कि नाउ यू हैव एक्वायर्ड दैट स्किल, यू हैव लर्न दैट स्किल. दैट इज नोन एज अ लर्निंग कर्व. दैट इज वी यूजली यूज अ लर्निंग कर्व टू assess that how much a person has learnt or acquired a particular skill.
A factor influencing learning.
हमारा factors influencing learning. This is very important that when we learn, what are the different factors that are related to learning. First of all, I said that reinforcement. हम कई बार बच्चों को कैसे सिखाते हैं, पढ़ना कैसे सिखाते हैं, positive और negative reinforcements देके, या फिर how do we teach them manners. वो भी वी टीच देम पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट, कि अगर आप इफ़ यू बिहेव प्रॉपरली देन you will be, you know, applauded or you will be appreciated by the people around you. And if you do not behave the way your parents or elders are telling you, तो यू विल बी रेप्रिमांडेड किसी भी तरह से, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट्स. तो एक तो जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं लर्निंग में वो ये रहता है कि रीइन्फोर्समेंट्स आप बच्चों को कैसी देते हैं. इफ़ यू आर ऑलवेज रीइन्फोर्सिंग द बैड हैबिट्स ऑफ द किड, तो द लर्नर द किड विल लर्न टू हैव दोज बैड हैबिट्स इन हिज लाइफ. क्योंकि आप कभी भी बच्चे को किसी भी एस्पेक्ट पे जो है वो गुस्सा नहीं कर रहे हो, उसे कभी सिखा ही नहीं रहे हो. तो री इन्फोर्समेंट इज लर्निंग, वॉट री इन्फोर्समेंट्स यू आर गिविंग प्लेज अ मेजर रोल इन लर्निंग. देन कम्स द फीडबैक और नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स. फीडबैक और नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स उसमें ये रहता है कि वेन एवर इट इज़ अनदर मोटिवेशनल वेरिएबल एंड नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स और फीडबैक. फॉर एग्जाम्पल, while learning to type, knowledge of one's how much I've learned, मैं type writing सीख रही हूँ तो मैंने कितना लर्न किया ये मुझे एक स्टेज पे आके पता भी तो होना चाहिए ना. ऐसा तो नहीं कर सकती कि मैं लर्न करती जा रही हूँ और मैंने कभी ये असेस ही नहीं किया कि whether I have acquired that skill or not. जैसे हम कभी पढ़ते भी हैं तो हम पढ़ते हुए ऐसा थोड़ी ना करते हैं कि हमने एक बुक शुरू की फर्स्ट लेसन से और हम टेंथ लेसन तक उसको पढ़ते गए. वी रीड इट in this manner only. We read the first lesson, we try to understand the concept in lesson one, then we get a feedback in the form of jaise hamare in text questions diye hote hain, ye ek feedback hai. In the SLM also we have provided these in text question. What are these in text questions? These in text questions are the knowledge or the feedback of your knowledge, what you have learned. To wo in text questions karke aapko pata chalta hai ki acha pichla mujhe concept yaad hua ya nahi hua. Agar hua to bahut achhi baat hai, I should move on to the next concept. अगर नहीं हुआ तो मुझे फिर से उस कॉन्सेप्ट को रिपीट करना है. तो दैट इज वाई द फैक्टर ऑफ फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग. देन कम्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रैक्टिस. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रैक्टिस में क्या आता है, आप कभी भी नोटिस करना कि कोई भी चीज़ आप लर्न करते हो, वेदर इट इज़ योर स्टडी मटीरियल और यू लर्न ड्राइविंग और यू लर्न एनीथिंग बैडमिंटन और कुछ भी, अगर आप उसको डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस में स्टेप बाय स्टेप करोगे तो योर लर्निंग विल बी मोर एज कम्पेयर टू इफ यू ट्राई टू डू इट एक ही बार में सब कुछ. फॉर एग्जाम्पल, यू आर लर्निंग अ पर्टिकुलर लेसन, तो अगर आप पूरा फर्स्ट लेसन की अगर मैं बात करूँ तो आप अगर पूरा लेसन वन से लेके एंड तक एक ही बार में पढ़ दोगे विदाउट गिविंग प्रैक्टिस ट्रायल्स और विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग इट इनटू सेक्शंस, देन यू विल बी बोर्ड एंड यू विल बी फटीग्ड ऑल्सो. ठीक है, तो आपका लर्निंग इफेक्टिव नहीं होगा. बट अगर आप उस चीज़ को पार्ट्स में डिवाइड करके लर्न करने की कोशिश करोगे, एक पैराग्राफ लर्न किया, एक कॉन्सेप्ट लर्न किया, फिर उसको रिपीट किया, फिर व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट दैट इट यू हैव यू नाउ नो द कॉन्सेप्ट्स, फिर यू मूव ऑन अलग, तो ये होता है कि यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रैक्टिस ट्रायल्स, तो आपका लर्निंग ईजी होता है. अब आप बैडमिंटन एक ही दिन में कोई 5 घंटे लगा के सारा सीख लोगे या आप एक एक घंटा रोज दे के सीखोगे, तो देर इज़ गोइंग टू बी डिफरेंस इन योर लर्निंग. So distribution of practice किस तरह से करते हैं, that matters. And then whole versus part learning is again that what I have told you, reading a lesson as a whole or dividing it into parts makes a difference. Then meaningfulness of the material. Why do we want to have simple books में हम क्यों simple language हम क्यों बोलते हैं कि simple language is easy to understand, क्योंकि वो हमें मीनिंगफुल ज़्यादा लगता है. अगर किसी चीज़ में वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा दी हो, डिफ़िकल्ट हो, तो वो उसका हमको मीनिंग ढूंढने में इतना टाइम लग जाता है, या फिर कई बार हम बोलते हैं बहुत कंफ्यूज था, पता नहीं चला वो क्या कहना चाह रहा था, व्हाट वाज़ द मैसेज इन इट, तो हमें चीज़ों को लर्निंग नहीं होती है. तो मीनिंगफुलनेस ऑफ द मटेरियल आल्सो मेक्स अ डिफरेंस. जैसे कि देयर इज़ एन एग्जांपल, कैट डॉग बैट बॉल, इट इज़ मीनिंगफुल, इट मेक्स इट ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. बट नैड बैब कॉल, what is this, BAB NAD COL, what is this, you won't be able to remember these nonsense syllables, these are called nonsense syllables. So meaningfulness of the subject material which you are learning is very important. Then interest and attitudes, what is your interest and what is your attitude. For example, I'm not interested in science, so if somebody is giving me something in science to learn, I would not be able to learn it because I'm not interested in it. तो मेरा attitude क्या है किसी subject को लेके, मेरा interest कितना है, वो बहुत matter करता है learning में.
जी, now coming on to the next topic, what are the different phenomena related to लर्निंग?
देखिए, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वेन एवर यू आर लर्निंग समथिंग यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर लर्निंग. एक प्रिपेयर्डनेस ऑफ लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट हैव नोटिस्ड वेरियस ऑर्गेनिजम्स एंड एनिमल्स डिफर इन देयर सेंसरी एंड मोटर केपेबिलिटीज. कोई बहुत अच्छे जल्दी से बहुत सेंसिटिव होते हैं विद देयर नोज, दे कैन सेंस एवरी थिंग विद देयर नोज. कितना प्रिपेयर्ड हैं वो, किस चीज़ से वो ज़्यादा अच्छे से सीख सकते हैं. A close scrutiny of variations found across species indicates that organism work under certain biological limits. अगर dog का biological limit है of sensing through his nose, but he cannot hear much from his ears, या कुछ किसी और animal की हम बात करें, वो preparedness नहीं है learning की. जब वो किसी में limits है learning की, तो it will become difficult for the one organism to learn certain things. So organisms are differently endowed with capabilities to respond. So the possibilities and ease of learning is determined by the preparedness on the part of organism for a given learning task. आप कितना prepared है, किसी की अगर eyes में difficulty है, sight में issue है, तो वो उनको पढ़ने में दिक्कत होगी, तो उनके लिए learning जो होगी वो easy नहीं होगी. दूसरा इसमें aspect आता है which is known as learning disability. Learning disability का मतलब होता है there is a disability because of the central nervous system में कोई आपका structure में brain में कोई problem है, जिसकी वजह से it is problematic for you or it is difficult for you to read or write or do certain other tasks. So these difficulties or disabilities should be treated. ऐसा करके treat हम नहीं कर सकते हैं, but किस तरह से हम उनके साथ manage कर सकते हैं so that it becomes little easy for you to understand the concepts. So that is known as the different phenomena. These are different phenomena that are important to have learning happen.
Now, last but not the least, we would like to know about what is a transfer of learning.
When we talk about transfer of learning, that means we'll talk about three concepts. It is positive transfer, negative transfer, and zero transfer. Positive transfer ka matlab hota hai when we are learning something and it will help in further learning. For example, I learnt riding a bicycle, so it helped me in learning riding scooter. Kyunki concept same hai. तो दैट इज़ पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कि आपने साइकिल चलाना सीखा तो आपने बाईसाइकिल चलाना सीखा तो इट वॉज ईजी फॉर यू टू लर्न टू राइड योर टू व्हीलर. ठीक है, चाहे वो स्कूटर हो, स्कूटी हो, जो भी हो, मोटरसाइकिल हो, तो दैट इज़ पॉजिटिव ट्रांसफ़र. चाहे आप एक लैंग्वेज सीखें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इंग्लिश सीखें तो इंग्लिश, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई भी एक लैंग्वेज सीखें और दैट लैंग्वेज, या आप मैथ्स सीखें तो मैथ्स इज़ हेल्पिंग यू टू अंडरस्टैंड फिजिक्स, शायद कॉन्सेप्ट सेम है, तो दैट इज़ नोन एज पॉजिटिव ट्रांसफ़र. मतलब एक, दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, व्हेन समथिंग हेल्प्स इन लर्निंग दी another different thing, that is known as positive learning or positive transfer of training. Second hota hai negative transfer. Negative transfer mein kya hota hai ki agar aap for example aap French seekhte hain aur fir aap German seekhte hain, to aapke French ke jo concepts hai wo aapke German ke concepts ke sath confuse aapko karte hain, so it becomes difficult for you to acquire the another language. So that is known as negative transfer, जब interference होती है. एक होता है zero transfer at all. Zero transfer का मतलब हुआ, say for example for me learning English and then learning French. English and French are as such for me not related. There are two different languages, they are not confusing. तो there is no transfer. English doesn't affect French, French doesn't affect English. So that becomes easy for me to understand. I'm not affected by either of the things. So this is known as zero transfer of training or zero learning. Yes, I would just want to tell you that today what we were doing, we were just talking about the phenomena of learning, in which we talked about the different, first of all, we talked about the nature of learning. So I would try to repeat that whenever we are trying to talk about nature of learning, first is learning is the permanent change in behavior as a result of experience and practice. But we must know that whatever happens as a result of maturation and developmental changes cannot be counted as learning. Then we talked about different experiments in learning, in which we talked about the classical conditioning experiment, which are also known as associative learning, and the operant conditioning experiments, jinme humne baat kiya that what is the how learning is instrumental on doing a particular task. Then we talked about different types of learning, in which we talked about verbal learning, skill learning, and concept learning and social learning, we also talked about that what are the different factors that are related to learning, in which we said that unless reinforcement plays a major role in learning, then the meaningfulness of the material plays a major role in learning. Feedback plays a major role in learning. Unless you know that how much you have learnt, you will not be able to learn properly. And lastly, we discussed about the transfer of training, which is positive, negative, and zero transfer of training.